ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की। तो आज 18 जुलाई है 2017। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा संध्या जागृति कार्यक्रम में। 18 जुलाई 1966, कितने साल हो गए? 51 साल हो गए, है ना। 18 जुलाई 2016 को 50 साल पूरे हो गए, इज इट राइट। और 18 जुलाई 2015 को 50वां साल शुरू हो गया और 16 को 50 साल पूरे हो गए। किसको? प्रभुपाद जी ने इस दिन को, इस दिन में इस्कॉन संस्था को स्थापन किया आज के तारीख में। मतलब संस्था को बनाया, रजिस्टर किया उसको आज। आज के तारीख में वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से रजिस्टर हो गया। जैसे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल भी एक दिन रजिस्टर हुआ था, फिर उसके बाद में उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BHRI दोबारा किया गया रजिस्ट्रेशन। किसी भी संस्था को ना मान्यता प्राप्त अगर करनी है तो उसको रजिस्टर करना जरूरी है भारत में। उसको चैरिटी कमिश्नर के पास, धर्मादाय आयुक्त कहते हैं उसको, उसके ऑफिस में उसको नोंद पंजीकरण करना पड़ता है, तब जाकर उसको मान्यता प्राप्त होती है। उसको नंबर मिलता है, TNA ऐसा कुछ नंबर होता है उसका, उसको कहते हैं पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन क्रमांक। तो ये हमारे संस्था का बुनियाद है। ६५ में अगस्त महीने में प्रभुपाद जी यहां से चले गए थे, उसके पहले वो जगन्नाथपुरी गए थे, उसके पहले वो शांतिपुर गए थे, वहां पर अद्वैता आचार्य के आश्रम में प्रार्थना करते थे रोते रोते कि मुझे शक्ति दीजिए आप। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी जाके उन्होंने जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लिया। वहाँ से बॉम्बे आए और बॉम्बे में फिर वो सुमति मोरार जी के पास बहुत समय उन्होंने मेहनत किया, मुझे टिकट दीजिए, मुझे टिकट दीजिए, बोला नहीं टिकट दूंगी आपको, आप बहुत बुढ़े हैं, इतनी वृद्धावस्था में आप जाएंगे ठंड में, आप वहीं पर आपका देहांत हो जाएगा, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, इतनी ठंडी है वहाँ पर, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी टिकट। फिर उन्होंने वहाँ पर उनके ऑफिस में, उनके ऑफिस के सामने था मैदान था सा गार्डन, वहाँ पर ड्यूटी ओवर होने के बाद 5-6 बजे के बाद में वो उनको बैठकर श्रीमद् भागवत सुनाते थे, जो उन्होंने खुद लिखा था वो उनको बैठकर सुनाते थे। बहुत दिन चला और कुछ दिन के बाद में बोलते थे फिर टिकट का क्या, वो नहीं टिकट नहीं दूंगी आप, फिर अगले दिन वापस बैठ के सुनना है, फिर कुछ दिन के बाद माता जी टिकट काट के आओ, टिकट दीजिए, नहीं नहीं टिकट नहीं दूंगी आप, प्रेम से कहते थे। लेकिन मना करने के बाद में उनकी जिद देखकर बहुत दिन के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपको देती हूँ, लेकिन मेरे पास बैठने वाले बोट का टिकट नहीं है, मेरे पास माल के, माल बेचते हैं ना माल, कार्गो बोलते हैं उसको, मालवाहू जहाज, उसमें मैं माल के साथ आपको भेज सकती हूँ। तो केवल इतने बड़े जहाज पर 5-6 लोग होते, खाली एक कैप्टन होता है, एक मेंटेनेंस होता है, इंजीनियर रिपेयर करने के लिए कुछ कुछ, एक दो लेबर होते हैं सामान उठाने के लिए वगैरह, बाकी हेल्पर होते हैं बस, बाकी सब माल ही माल, हजारों टनों का माल भरा रहता है। कभी कभी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है ना, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इसके साइज का भी बोट होता है, उतना मंजिल होती है उसके अंदर, सब सामान ही सामान भरा रहता है, इतना बड़ा बिल्डिंग ही बोट में जा रहा है, इतने बड़े बोट होते हैं कभी कभी कि बोट पर ही विमानतल होता है, विमानतल, और वहां से हवाई जहाज उड़ते हैं आकाश में, उसको फाइटर बोट बोलते हैं। मतलब अपना वो सांता क्रूज का एयरपोर्ट है ना, वैसा एयरपोर्ट बोट के ऊपर होता है और उसमें से हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ऐसा बड़ा माल बहु जहाज में प्रभुपाद को टिकट दिया। और प्रभुपाद जी 1965 में अगस्त महीने में उधर उतरे अमेरिका, 40 दिन की यात्रा की। हम लोग का ट्रेन का यात्रा कितना हो गया है, मैक्सिमम कितना हो गया है, यहाँ से जाएंगे आप इनके गांव में जाएंगे मिथिला में तो 2-2.5 दिन में पहुंच जाएंगे। इतना से पूरा से कन्याकुमारी निकलेंगे ना तो भी 3 दिन में ट्रेन में बैठ के आप पहुंच जाएंगे। हम लोग 3 दिन का सफर किया, बाप रे 3 दिन का सफर, तो 40 दिन का सफर। साधु आदमी हाँ, कोई लहसुन प्याज नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, तो 40 दिन कैसा निकाला होगा। सब नॉनवेज खाने वाले बोट पे, दारू पीने वाले, क्योंकि बोट में कुछ दिखता नहीं उनको पानी के अलावा। बोट में बहुत दिन रहेंगे ना तो ये शहर में आने के बाद थोड़ा दिमाग खराब होता है आदमी लोगों को देख के, क्योंकि 40 दिन तक खाली पानी देखते हो, कोई नहीं कुछ भी नहीं है, खाली पानी ही पानी, सब जगह पानी ही पानी। तो वो इंसान इंसान के साथ उनको बोलने का ना हैबिट ही खत्म हो जाता है। ऐसे बोट में उन्होंने 40 दिन का सफर किया। ऐसा नहीं सफर किया पहुंच गए, 2 हार्ट अटैक आए बीच में, किधर आईसीयू, किधर भक्ति वेदांत, किधर बॉम्बे हॉस्पिटल नहीं था उधर, ऐसे ही झेल लिया पूरा दर्द को, बोलते ना बदन पे झेल लिया, कोई इलाज विलाज कुछ नहीं किया, खाली भगवान को प्रार्थना किया। फिर उनको स्वप्न आया एक दिन, तो सपने में क्या दिखा, कृष्ण भगवान ने उस बोट का कैप्टन का पोजिशन ले लिया है। श्री कृष्ण भगवान कैप्टन बनकर उस बोट को चला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तो आश्वस्त हो गए कि अभी भगवान ने इसका कैप्टनशिप ले लिया है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो भगवान की दयालु कितने देखो, जब अभी हृदय का दौरा पड़ रहा है किसी को तो कितना कमजोर हो जाएगा आदमी, वो दिल से और भावना से कितना कमजोर हो जाएगा। अकेला आदमी बेचारा 80 साल की उम्र, अकेला आदमी बीच समुद्र के अंदर हार्ट अटैक आता है तो हमारी तुम्हारी अवस्था कैसे होगी। नहीं जाना मुझे अमेरिका में, नहीं करना प्रचार मुझे, बस हो गया अभी मैं जाता हूँ घर पे वापस, कौन करेगा प्रचार ऐसा, बीच में हार्ट अटैक आएगा तो मर जाऊंगा तो कौन देखेगा मुझे, नहीं करना है बस हो गया अभी, मैंने कोशिश तो किया, सॉरी मैं लौट के आ रहा हूँ। ऐसे भयंकर अवस्था में कविता लिखते हैं कि भगवान आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, मुझे पता नहीं आप मुझे क्यों भेज रहे हो, मुझे पता नहीं क्या उद्देश्य है आपका, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मुझे भेज रहे हो तो कुछ ना कुछ मेरे हाथ से काम करवाना है आपको, मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे अगर कहीं ले जा रहे हो तो मुझसे कुछ करवाना है आपको, और वो श्रद्धा है इससे मैं चल रहा हूँ आगे, आप ही संभालो। तो ऐसे भक्तों को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, बताया कि डोंट वरी, तुम जिस बोट में बैठे हो ना उसका कैप्टन मैं बन गया हूँ, मेरे हाथ में चक्र है उसका, अभी मैं चला रहा हूँ उसका। तो वो बोट का जो कैप्टन था ना, एक्चुअली कैप्टन था, उसका भी इंटरव्यू लिया गया बाद में। उसने बताया कि उस समय उसने भारत से अमेरिका कई बार बोट लेके गया था, रेगुलर था वो ट्रैवलिंग करने वाला। तो कहता था कि अटलांटिक ओशन था ना हमारा, कैसा हिंदी महासागर है, फिर वो बीच का वो सऊदी अरब वगैरह कंट्री, उसमें आखात बोलते हैं उसमें, हाँ गल्फ गल्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं खाड़ी खाड़ी, वो खाड़ी देखा उसने, उसके बाद में उसने अटलांटिक ओशन भी देखा है। तो कहते हैं अटलांटिक समुद्र में कम से कम 40 से 50 फीट ऊंची लहरें आती है। आप समुद्र में गए कभी, दादर में चौपाटी में गए कभी, कितना फीट का लहर आता है, 2-3-4, कभी कभी कमर तक आता है, बस 3-4 फीट का आता है। तो जगन्नाथपुरी जाओगे तो 7-8 फीट का आता है, मेरे जैसे आदमी को उठा के फेंक सकते हैं, 6-8 फीट का ही लहर ही होता है तो मेरे सर पर ही पानी जाएगा, लेकिन 6-8 फीट, 40-50 फीट की लहर का मतलब क्या होता है, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो जैसे अटलांटिक ओशन में जब भी मैं गया बोट लेके तो हर बार 40 से 50 फीट की लहरों को उठते हुए मैंने देखा हुआ है, इतना भयंकर सागर है वो, उसमें से मैंने कई बार बोट लेके अमेरिका पहुंच गया। लेकिन बोलते हैं जिस दिन जिस समय जिस साल जिस ट्रिप में प्रभुपाद जी उनके बोट में थे उस समय बोलते एकदम 2-4-5 फीट के ले रही थी, पूरा अटलांटिक ओशन शांत था, उसमें से बोट निकल के अमेरिका पहुंच गए। आप बोलेंगे अरे एक मंजिल तो हासिल हो गई पूरी, वो तो है अमेरिका में, जिंदा पहुंच गए तो हार्ट अटैक के बाद, है ना। ऐसा नहीं कि उधर सब लोग शिष्य लोग खड़े हैं झंडा लेके, जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा, कोई नहीं था उधर। एक कोई ऐसा पहचान का था, उसके घर में रहने का व्यवस्था किया था, उसके घर में मांस खाते थे, सब कुछ करते थे। प्रभुपाद जी उसके घर में जाके रहे, फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें छपवाई थी। कौन सी किताबें? श्रीमद् भागवत, जो भी पूरे 18 वॉल्यूम 18 किताब अवेलेबल है, 12 खंड है उसके। उसका पहला खंड लिखा था उन्होंने, पहला खंड 3 किताबें लिखी थी, और वो 3 किताबें इंग्लिश में लिखे, बहुत सारा छपाई करके बहुत सारे बॉक्सेस लेके गए थे। वो उन्होंने उधर समुद्र किनारे में उतारा उसको, किसी एक जगह रखवाया, किसी एक जगह रहने को गए। 80 साल का आदमी जो है ना, अपने हाथ से खाना मंगा रहा है, क्योंकि वो खा नहीं सकता है उधर, सबको नॉन वेज, फ्रिज के अंदर अंडा नॉन वेज सब रखा हुआ है उसके अंदर, तो अपने हाथ से खाना मंगा रहे हैं। उनको भी दे रहे हैं प्रसाद बना के, वो भी बड़े चाव से खा रहे हैं, लेकिन फ्रिज में सब उनका नॉन वेज भरा हुआ है। ऐसे घर में कुछ दिन रहे, लेकिन वहाँ पर हर दिन रहना मुमकिन नहीं था, तो छोड़ के जाना पड़ा। तो छोड़ के कहाँ गए वो इम्पोर्टेंट है, एंट्री तो किया तो किसी के घर में गए, चलो ठीक है। उसके बाद झोपड़पट्टी में गए, जैसे अगर आपको बोलेंगे मेरा घर खाली करो और धारावी में रहने को जगह दे रहे हैं, यहाँ पर बाजू में चरस का अड्डा है, ये बाजू में दारू का अड्डा है, ये बाजू में मटन का काटने का जगह है, ये पीछे तम्बाकू का अड्डा है, इधर जुए का अड्डा बाजू में है, इधर आगे जाएंगे तो प्रोस्टिट्यूट वेश्या लोग रहते हैं, ऐसा बताएंगे आपको तो आप क्या बोलेंगे? बोले आपके घर में मेरे को झोपड़ी में नीचे उधर वॉचमैन के कमरे में जगह दो, लेकिन वहाँ मत भेजो। लेकिन प्रभुपाद जी जो मैंने वर्णन किया ना अभी, उसी जगह पर उनको रहने को भेजा गया। और हमारे लोग शराब पी के गिर जाते हैं, वहाँ के लोग चरस गांजा ब्राउन शुगर हीरोइन गर्द मार के गिर जाते हैं, कोई जानवर भी उससे अच्छा, क्योंकि जानवर नशा नहीं करता कभी। देखा है हमने जानवर, जानवर जाके उधर खड़ा है लाइन में, दारू की बोतल खरीद रहा है, दारू पी के रात को नाच रहा है। जानवर लोग कभी नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जो मांस खाने वाले वो खाते हैं, शाकाहारी जानवर मांस नहीं खाते, तो चोरी नहीं करते किसी की, कुछ स्टोर नहीं करते, कुछ किसी का लेके संभाल के रखते हैं, कल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करते। इतने गिरे हुए लोग, जानवर भी उससे अच्छे। उसके बीच में भारत का एक सर्वोच्च साधु रहता है, सोचो आप। सुबह उठकर तिलक लगाकर जप करने के लिए निकल रहा है, तो सब दारू पी के नशा करके गिरे हुए लोग हैं ना, ऐसे रस्ते में गिरे हुए। हमारे कैसे कभी होते ना स्टेशन पे, कभी कभी मिलते हैं ना अपने, वैसे ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए, ऐसे सब जगह लोग पड़े हुए हैं। उसके बीच में से जा रहे हैं डंडा लेके, सुबह जब करने को घूमने को जा रहे हैं, उसमें बीच में रह रहे हैं। हमको अगर बोलेंगे आप जाओ कहीं कामाटीपुरा में रहो, तो कैसे रह सकते हैं हम लोग, कैसे जब कर सकते हैं? सब औरतें वेश्याएँ गिराए लोग घूमते रहते हैं उधर, रात को दारू पी के क्या क्या करते रहते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उधर रहना भी मुश्किल है। जब करना तो आगे की बात है, खाना खाना बैठ के दूसरी बात है, नहीं गंदा माहौल है उधर रहे हो। और कभी कभी गार्डन में जाके बैठते थे। देखो फिर सोचो आप, कोई सहारा नहीं है किसी व्यक्ति को, कोई पैसे देने वाला व्यक्ति भी नहीं है, खुद का खुद संभालना है, पत्नी बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, खाना भी बनाना है खुद, रहने के लिए भी जगह ठीक से नहीं है, और एक बड़ा काम करने के लिए आदमी गया उधर। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का प्रेम का संदेश लेकर वर्ल्ड में फैलाना है, ऐसा बड़ा काम लेकर एक आदमी गया है, और ऐसा किधर है? झोपड़पट्टी में, शराबियों के बीच में। लेकिन मन में निश्चय बहुत जबरदस्त। फिर एक दिन एक गार्डन में बैठे, उसके बाजू में एक बुड्ढा आदमी बैठा है उस देश का, और उससे बात कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हो? हमें इधर से आए, वहाँ ऐसा क्यों आए हो, क्या करने वाले हो, ऐसा वैसा। तो प्रभुपाद जी उस बुढ़े आदमी को बोलते हैं कि हजारों शिष्य बने हुए हैं, हजारों भक्त बने हुए हैं हरे कृष्ण, लाखों किस्ता किताबें छप चुकी हैं, कई मंदिर बन चुके हैं, विश्वभर का आंदोलन रेडी है। बोलते थोड़ा टाइम बाकी है इसके लिए बस। अभी हम लोग सुनते थे, हंसते थे, क्या बुढ़ा पागल हो गए, इसका रहने की जगह नहीं है, एक भी शिष्य नहीं है, थोड़ी सी किताब लेके आया है, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। वो बोल रहा है हजारों शिष्य ऑलरेडी हो गए हैं, लाखों किताबें बढ़ चुकी हैं, और बहुत सारा मंदिर बन चुके हैं, किधर कुछ है, सपना देख रहे हैं, वो झूठा सपना देख रहे हैं, सपना किधर, कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी को विश्वास था ये सब होने वाला है, कुछ समय बाकी है बस, बाकी वो प्रकट हो जाएगा सब, जो भी अप्रकट है वो प्रकट हो जाएगा। अगर आपको समझो इस्कॉन का इतिहास पता ही नहीं है और पहली बार आप किताब पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि बुढ़ा आदमी एक दूसरा बुढ़ा आदमी को बैठ के गार्डन में बता रहा है, तो आप लोग हंसोगे, बोले क्या पागल आदमी है ना। लेकिन प्रभुपाद जी जो उन्होंने उस दिन बताया था बेंच पर बैठकर, वो आज सब हो गया हुआ हम देख रहे हैं सब लोग। आज सैकड़ों मंदिर बने हैं, 657 मंदिर बने हुए हैं, 652 मंदिर, 652 मंदिर बने हैं और लाखों भक्त बने हुए हैं और कम से कम 6 अब्ज 600 करोड़ किताब आज तक बच चुके हैं लोगों के पास है, और कितने सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, कितने सारे सेंटर बने हुए हैं। तो जो उन्होंने ऐसे ही, हम लोग बोलते हैं हवा में बात कर रहे हैं, ऐसे हवा में बात किया था ना, वो आज सब सत्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। फिर उन्होंने एक जगह भाड़े पे लिया, वो गार्डन के पास में गया, वो सब देख के आया, वो सब जिस पेड़ के नीचे बैठते थे ना, वो कीर्तन करते हुए, आपका डब्बा होता ना चकली, चकली का डब्बा होता ना, चकली का, या अपन दिवाली में लड्डू बना के रखते ना एल्युमिनियम का डब्बा रहता, ऐसा डब्बा में वो बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, ड्रम के और आँख बंद करके गा रहे, धुंध होकर एकदम मग्न होकर गा रहे। और बाकी फॉरेनर लोग भी, लंबे लंबे बाल वाले लड़के लोग भी आके बैठे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फोटो भी उनका। और मैं उस पेड़ के पास गया भी, वो पवित्र पेड़ है। तो उसके बाद उसके पास में ही एक पेट्रोल पंप था, उसके बाजू मैंने एक कमरा लिया भाड़े से लिया, और वहां पर फिर क्लासेस शुरू किया, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार ऐसा कुछ 3 दिन हफ्ते में, शाम को भगवद गीता क्लास, और दिन में जाके मार्केट में भिक्षा मांगने का, सब्जी लेने का डोनेशन में, वेजिटेबल वगैरह लेने का, और घर आने का फिर उसका बनाने का प्रसाद, और बनाने के बाद खुद आके बैठने का और प्रसाद प्रवचन देना। तो प्रवचन में आप जैसे यंग लड़के ऐसे आते हैं, कुछ शराबी, कुछ शराब पी के, कुछ नशा करके, गर्द लेके, ब्राउन शुगर लेके, ऐसे लोग आके बैठते। आप लोग तो इतने अच्छे लोग, आप में से कोई शराब पी के नहीं आए, कोई गर्द और ब्राउन शुगर लेके नहीं, चरस गांजा पी के नहीं आया कोई, उनके प्रवचन में सब लोग ऐसे ऐसे नशे में आते थे। एक आदमी ऐसा नशे में ऐसा ऐसा आया, नाचते नाचते ऐसा ये करके, उसके हाथ में एक टॉयलेट का पेपर था, अपना होता ना टॉयलेट पेपर लगाते ना अपने बाथरूम में, और ऐसा ऐसा करके गया और बाथरूम में घुस गया, और बाथरूम में जाके वो टॉयलेट का पेपर लगा दिया उसने। तो प्रभुपाद ने कहा कि उसने आज पहली बार भगवान का सेवा किया, एक भगवान के भक्त में आकर टॉयलेट का पेपर लगाया उसने, और ऐसा करके बैठ गया, नाचा कुछ देर, चला गया। प्रभुपाद नशे में लोग प्रश्न पूछते थे, ए महाराज ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, कैसा रहेगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ इतना, मैं भी शेड्यूल टाइट है मेरा, उसमें मैं आधा घंटा प्रवचन करने आया, तो कुछ शराबी मुझे प्रश्न पूछते, हे महाराज क्यों प्रवचन दे रहे हैं आप, ये कौन सा किताब पे बोल रहे हैं आप। तो बोला क्या करो, मैं बंद करना ही अच्छा है। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने प्रवचन दिया, उसमें से अभी आप समझो 30-35 लोग बैठे हो, 50 लोग बैठे हो, 25 लोग नशा करके आए होंगे समझो, और कुछ लोग टाइट है एकदम, और कुछ लोग ऐसे ही नशा करके आए, तो क्या प्रवचन देंगे उनको, क्या बोलेंगे। ऐसे ही उन्होंने प्रवचन दिए, और फिर उसमें से कुछ लोग भक्त बने। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक साल चला ये पूरा ड्रामा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, जगह नहीं, इधर उधर भिक्षा मांगने का, कुछ ना कुछ बनाने का अपने हाथ से, फिर ऐसे नशे वाले लोगों को अपने हाथ से खिलाने का, फिर आधा आधा छोड़ के जाएंगे, वो सब जमा करने का, फेंकने का उसको, फिर उस प्लेट को साफ करना है, फिर अंदर जाके बर्तन साफ करना है, वापस अगले दिन के प्रवचन के लिए फिर जाके भिक्षा मांगना है, और फिर वैसे ही लोग आएंगे उसमें। तो ऐसे कुछ लोगों को लगा कि इतना बुढ़ा आदमी, तो हेल्प करने को कोई नहीं है, तो खाना कैसे आता है तैयार इतना। तो कुछ लोगों ने पूछने का हिम्मत किया कि महाराज जी ये बनता कैसे है सब। मैं बनाता हूँ। अच्छा तो कहाँ से लाते हो। बोले तो मार्केट से लाता हूँ। बोले तो पैसा नहीं, भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा बहुत दया आया उनको मन में, अरे इतना बुढ़ा आदमी हमारे जवान लड़कों को खाना बना के भिक्षा मांग के खिला रहे हैं। तो बोलते कि हम आपको मदद कर सकते क्या। बोले करो ना मदद करो ना, मैं यही इसी दिन का वेट कर रहा था कि आप मुझे पूछेंगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हो तो क्या करूँ, करो करो। तो मदद करना चालू किया उन्होंने, तो बोले कि मदद तो करूँगा लेकिन रह सकता हूँ क्या, पर यहाँ रह के मदद करूँगा आपको, रह जाओ मर्जी आपके रह जाओ। तो किसी ने बोला कि आप जैसा सर भी मुंडवा सकता हूँ क्या, हाँ मुंडवाओ, आप जैसा तिलक भी लगा सकता हूँ क्या, लगाओ, तिलक लगाने को सिखाया उसको। तो धोती पहनूंगा आपके जैसा, था धोती पहनो, खाना बनाओ क्या, खाना बनाओ, ऐसे करके करके धीरे धीरे लोग वहां पर जमा होने लगे। यंग लड़के, इनका उम्र 80, लड़कों का उम्र 22, 23, 17, 18, 19, और रहने लगे उनके भक्त बने। फिर वहां एक ही कमरा है उनका, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कमरा, वो भी भाड़े का, खुद का भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अपने को संस्था बनाना है। तो क्या बनाना है, वकील को बुलाया, वकील को बुलाया और क्या बताया, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल। अमेरिका में एक छोटा सा कमरा भाड़े से लिया और इंटरनेशनल कैसे बन गए हो, बोले आगे बनेगा, अभी शुरुआत है। तो वकील भी हैरान हो गया, बोले अभी तो तुम अमेरिका के पेट्रोल पंप के बाजू में एक कमरा लिया है छोटा सा, उसमें रहते हो, उसमें खाना बनाते हो, उसमें स्नान करते हो, उसमें कथा भी करते हो, और बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी, आप बनो आपको प्रॉब्लम नहीं। बोले गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं, भगवान का नहीं, कृष्ण का ही नाम क्यों, उन्होंने नहीं, भगवान का नाम कृष्ण है तो कृष्ण होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भगवत भावना संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। कितना विश्वास था उनके मन में। जिस समय आपने वो पिक्चर देखा है त्रिशूल, देखा है त्रिशूल, अमिताभ बच्चन ऐसा आता है शहर में, हाँ सर जेब में पूरी कौड़ी नहीं, पिताजी का बदला लेना है, जो पिताजी माँ से शादी नहीं किया, उसका शादी किया, बड़ा बिजनेसमैन बन के अमीर मालिक बन के बैठा है, और जाता है और करोड़ों का व्यवहार करता है, और बोलता है बाद में आप जानते हो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से व्यवहार कर रहे हैं, और वो आदमी से करोड़ों का लाखों का व्यवहार करता है, तो बाद में बोलता है आपसे मैं लाखों का व्यवहार कर रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं होगा मेरे जीप में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं है, लेकिन आप यकीन रखिए 7 दिन में आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। ये तो पिक्चर का डायलॉग है, वो तो किसी ने लिखा है, हीरो को खाली बोलना है, करना थोड़ी कुछ है उसको, ऐसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा बोलना है उसको, अभी इत्मीनान के साथ बोलना है, एक्टिंग ही तो करनी है, पैसा लेना एक्टिंग का, उसमें क्या है। तो लाखों का मैंने व्यवहार किया लेकिन मेरे जीप में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं, वो तो त्रिशूल पिक्चर था, अमिताभ तो करोड़पति आदमी है, पिक्चर में फटेजर बन के एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना रहे और जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ नहीं है, बोले अंतर्राष्ट्रीय बनाओ, अंतर्देशीय मत बनाओ, अंतर्राज्यीय मत बनाओ, वर्ल्ड का ही बनाओ पूरा राज। देखो ऐसा जो वर्ल्ड का कोई बड़ा शहर नहीं है जिसके अंदर हरे कृष्ण का मंदिर नहीं हो गया ना अंतर्राष्ट्रीय। और कैसे, जब जिंदा थे तो 108 मंदिर बनाए, कितने साल में बनाया, केवल 12 साल में, मतलब एक साल में कितना बनाया होगा, 9, एक साल में जैसे 9 हॉस्पिटल बनाया वैसे ही बात हो गई ना, वो 9 हॉस्पिटल बना सकते हैं हम लोग, 20 साल के बाद में फिर 10-12 एक्स्ट्रा हो गए, वो छोटे छोटे हो गए। रूपा जी ने 12 साल में 108 मंदिर बनाए, बोलो, हर जगह लोगों को ट्रेनिंग देना, हर जगह लोगों को समझाना, ड्रेस पहनने को सिखाना, कथा करने को सिखाना, मंदिर की पूजा करने को सिखाना, खाना बनाने को सिखाना, प्रचार करने को सिखाना, कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, वो सब सिखाना, फिर यहाँ से दूसरा, वहाँ से तीसरा, और 6-6 महीने के डिवोटीज, अरे तू अभी 6 महीने का डिवोटी बनाना, चलो तू लंदन में जा, वहाँ जाके मंदिर खोलना। जैसे आपको बोला है प्रभु जी झमकानाथ जी, चलो अभी आप बड़ौदा में जाओ, एक भक्ति हॉस्पिटल खोल लो, तो झमकानाथ जी गए और हॉस्पिटल खोल दिया, ऐसे ही करते थे प्रभुपाद जी। नए नए 6-6 महीने के लोगों को अभी अभी जब शुरू किया, अभी अभी जब करना शुरू किया है, दूसरे देश में जाके बेचते थे और वहां जाके मंदिर खोला उन्होंने, और वो सब पहले नशा करने वाले थे सब बच्चे लोग, अभी भक्त बने हुए, पहले नशा करने वाले थे। कितना पावर रहेगा उनके अंदर, कितना विश्वास रहेगा भगवान की बात पर, कितनी श्रद्धा रहेगी उनकी, गुरुजी ने जो आदेश दिया था कितनी शक्ति थी उस आदेश के अंदर। एक आदेश लेकर गए थे उनका, क्या बोलते ना, जेब में 5 फूट की कौड़ियाँ बनी है, लेकिन हृदय में गुरुजी का आदेश का पूंजी लेकर गए थे। तो आज का वो दिन है, 1965 में अगस्त में पहुंचे, और 1965 में अगस्त में पहुंचने के बाद में 11 महीने के बाद में 1966 में 18 जुलाई को उन्होंने ये स्थापन किया, उसको रजिस्टर किया संस्था को, और उसका भविष्य, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। हमारा तो जन्म भी थी वो को के 3-4 सारे हो गए थे, जैसे नन्हे नन्हे बालक थे हम, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर संस्था स्थापन किया था। और वो जो छोटी संस्था थी उधर, एक अभी आज मैंने सुना कि वो जो जगह थी ना प्रभुपाद जी ने भाड़े पे बनाई थी, वो डेवलपमेंट में चली गई, उसको तोड़ दिया गया। अभी वो जगह नहीं रहेगी, उसका फोटो रहेगा खाली। बहुत साल तक जगह थी वो, उसको अपने भाड़े में लेके रखा था, लेकिन वो बिल्डिंग ही पूरा तोड़ के नया बिल्डिंग बनने जा रही है, तो फिर आपको उसमें रखने का चांस नहीं है कुछ। सब इतिहास में चला गया वो, लेकिन शुरू हुआ था वहीं पर, वहीं पर बीज बनाया, बीज डाला गया था। जो अभी हरे कृष्ण का भक्ति हॉस्पिटल कितना बड़ा है, 80,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है ये, और 70,000 का बन रहा है पीछे। और फिर वो अम्बिस्ते में अलग है, उधर विक्रमगढ़ में अलग है, तारापुर में अलग है, बरसाना में अलग, वृंदावन में अलग। कितना टाइम लगता है उसको बनाने में, जगह लेना है, बनाना है, पैसे इकट्ठा करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है, सर्विस देना है। एक आदमी ने किया सब कुछ, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। देखो आज सुबह डॉक्टर बीसी शाह के घर में उनके पिताजी का डेथ हो गया, अर्ली मॉर्निंग रात को 12:30 बजे। तो ऐसे ही लोग दुनिया में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हर व्यक्ति को मरना है, कोई परमानेंट नहीं यहां पर। हाँ, कोई व्यक्ति 80 साल का हो गया, कोई 85 का हो गया, 90 का हो गया, कोई सेंचुरी मार लिया, चलो फोटो आ गया पेपर में उसका, 100 क्रॉस कर लिया उसने, लेकिन मरना तो है ना उसको। और 100 भी क्रॉस कर लिया तो कैसे, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, मुंह से बोल नहीं सकता है, पैर से चल नहीं सकता है, पेशाब और लैट्रिन किधर से हो रही है मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसा जी के फायदा भी क्या है, और मरना है निश्चित उसके बाद में। तो सबको मरना है, ये सबको मरना है, इस बात के ऊपर संत को बहुत दुख होता है। प्रभुपाद जी को दुख था कि सब लोग ना अज्ञान में मर रहे हैं, और अज्ञान में मर के दोबारा जन्म ले रहे हैं, और दोबारा कष्ट भोग रहे हैं। इनको ज्ञान देना चाहिए, और बार बार आना जाना निरंतर यहां पर जो होते चलते रहता है वो बंद होना चाहिए। इसके मन में उन्हें करना थी। तो आमतौर पर आप लोग क्या बोलेंगे, उम्र कितना हो गया आपका, 70 हो गया ना, अभी आराम करो, आप बहुत मेहनत किया आपने, रिटायर हो जाओ, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ बैठ के, और भजन करो सो जाओ, थोड़ा चलने को जाओ, थोड़ा गोली खाओ बैठ जाओ। कौन बोलेगा आपको नया काम शुरू करो, अभी इंग्लैंड जाओ उधर हॉस्पिटल बनाओ नया। जिंदगी भर वही काम किया, थक गए अभी, अब बोलेगा 70 साल की उम्र में जाके अभी इंग्लैंड में नया हॉस्पिटल खोलो, फिर इंग्लैंड से आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में खोलो, फिर वहां से जर्मनी में खोलो। ऐसे ही क्या प्रभुपाद जी ने, इतनी बड़ी उम्र में कितना हिम्मत रहेगा उनके अंदर, कितना हिम्मत रहेगा। दो हार्ट अटैक जिसको हो गया है, कितना तकलीफ हो गया रहेगा उसे, कितनी हिम्मत रहेगी उनके अंदर, उत्साह कितना रहेगा, न हारने की जो होती है प्रवृत्ति, अरे हारूंगा नहीं मैं, चलता रहूंगा, कुछ भी हो जाए तो छोड़ूंगा नहीं उसको, कितनी हिम्मत रहेगी उनके। हमको वो हिम्मत लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो दान देता है ना, उससे दान लेना तो इच्छा अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि हमको दान लेना चाहिए, कोई दान दे रहा है तो लेना चाहिए, लेकिन एक दिन दान लेते लेते दान देने वाले का हाथ भी लेना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, दान देने को सीखना भी चाहिए अपने को। दान लेते रहेंगे ना आप, हर दिन इससे ले रहे हैं, सही दिन बे बांट रहा है कुछ, वो बांट रहा है, वो बांट रहा है, वो बांट रहा है, हम ले रहे ले रहे लेते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि दान देने वाले का जो प्रवृत्ति है दान देने का, वो भी लेना चाहिए, और हमको भी दान देने को सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का गुण गौरव तो हम कर सकते हैं, वाह वाह प्रभुपाद जी क्या बड़े बात, वाह क्या हिम्मत थी, क्या निश्चय था, क्या उनका हिम्मत हार न हारने का स्वभाव था। लेकिन हम लोग कभी करेंगे सब, वो खाली उनकी कथा ही करते रहेंगे, वाह वाह क्या बात है प्रभुपाद जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम नमो विष्णु पादाय मंत्र बोलेंगे, कथा करेंगे 18 जुलाई को करेंगे, 15 अगस्त को करेंगे, जन्माष्टमी को करेंगे, बर्थडे पे करेंगे उनके, फिर वो भाव दिन पे करेंगे। लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाई वो हम कब दिखाएंगे, उन्होंने जो करुणा दिखाई वो हम कभी दिखाएंगे, जो सेवा उन्होंने की वो हम कभी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि मैंने ये पेड़ लगाया भक्ति का, इसका इतने फल बनाए हुए हैं, कि अकेला मैं किसको किसको बांटू, मुझे हेल्प चाहिए, ये करोड़ों फल है, मैं कितने बांटूंगा, दिन भर बैठ के भी इतना बांट नहीं पाऊंगा, कुछ चार पांच लोग और आएंगे तो और निकाल के बांट सकते हैं, बांटने के लिए भी आदमी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते मैं अकेला था और मैंने इतना किया, आप लोग अभी कितने लोग हो, हजारों लाखों लोग हो गए हरे कृष्ण में, सब लोग मिलके करो, खाली मुझसे मत लो, जो लिया है वो लोगों को भी दो, ऐसे बोल रहे। तो हम सब लोग उनके छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं, उनको हम लोग प्रभुपाद नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कुछ क्यों ना हो, ऐसे बच्चा होता ना, बच्चा छोटा कोई सब पूरी फैमिली बाहर गांव जा रही है, बहुत सारे बैग हैं, तो इतना छोटा बैग बच्चा भी पकड़ लेता, मम्मी ये पकड़ लूंगा मैं, वाटर बॉटल मैं पकड़ूंगा, है ना, उसका भी एक है कि वो बैग छोटी सी पकड़ सकता है, वाटर बॉटल छोटी सी उसकी गंदे में बैग अपने रख सकता है कि मम्मी मेरे बैग में पकड़ूंगा, बच्चा है ना, वो बड़ा बैग तो नहीं पकड़ सकता है वो, लेकिन जितना पकड़ सकता है उतना वो पकड़ रहा है, ये उसका यश है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है मम्मी ये बोतल भी तुम पकड़ो, ये मेरी बैग भी पकड़ो और मुझे भी गोदी में ले लो, ऐसा गोदी गोदी कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही कुछ, हम लोग माँ के बच्चे हैं, माँ का दूध भी पिया है, माँ का खाना भी खाया है, माँ ने बैग भी पकड़ा है, बोतल पकड़ा है, बोले मम्मी मुझे भी पकड़ो अभी गोद में, कितने दिन ऐसे रहेंगे हम लोग, एक दिन तो बड़ा बनना पड़ेगा ना, बड़ी बैग लेना पड़ेगा और आगे घर का काम चलाना पड़ेगा, है ना, छोटा सा था अभी माँ बाप ने बड़ा किया, अभी आपको माँ बाप को देखना पड़ेगा और खुद घर चलाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फिर, तो वही प्रभुपाद जी हमसे उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने तो किया अपना जिंदगी में, जब नहीं करना चाहिए था उस उम्र में किया उन्होंने, दुनिया रिटायर होती है, उनके शिष्य लोग थे जो 20-25 साल में भक्त बने ना उनके उम्र के, उनके शिष्य लोग ने बचपन में ही ये सब काम शुरू किया प्रभुपाद का, अभी वो 65-70 साल के हो गए, तो 70 साल की उम्र के हो गए ना तो उनको पता चल रहा है अभी 70 साल की उम्र का मतलब क्या होता है, उस उम्र में शरीर की हालत क्या होती है, ये उनको अभी महसूस हो रहा है, बोलते ये उम्र में मैं भी थकते जा रहा हूँ और ये उम्र में प्रभुपाद ने नया काम शुरू किया है, कैसे किया होगा, अभी हमारे गुरु जी का उम्र अभी कितना हो गया है, 67 हो गया है, अभी 2 साल में 69 हो जाएंगे, बार बार बोलते रहते हैं कितने शरीर थक गया है अभी, कितना शरीर में तकलीफ है, और ये उम्र में प्रभुपाद ने नया काम शुरू किया और 108 मंदिर बनाया, ये उम्र के बाद की बात है वो, अभी नहीं, हमारा जब एंड हो रहा है उनकी शुरुआत हो रही है, अद्भुत जीवन है उनका, बहुत अद्भुत। हम लोग केवल ना यहाँ बैठ के कथा ही कर सकते हैं, आगे करने का बहुत मुश्किल है जो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से हम भी उनका चमत्कार कर सकते हैं, छोटा मोटा जो तो भी है, जैसे बच्चा जैसे वाटर बॉटल उठा रहा है वो, वैसे हम भी एक आध वाटर बॉटल उठा सकते हैं, क्यों ना उठाएंगे, इतना शक्ति दिया उतना उठाएंगे, लेकिन करना जरूर चाहिए, लेकिन गोदी गोदी नहीं करना चाहिए, मम्मी मुझे गोदी ले लो अभी थक गया हूँ पैर दुख रहे हैं, भाई गोदी गोदी करने का समय गया, अभी इतना सब लिया मम्मी से, अभी हमने मम्मी को देने का समय आ गया, अभी लौटाने का समय आया, मम्मी का देखभाल करने का समय आया, तो हमारा भी आज के दिन ही उत्तरदायित्व है कि प्रभुपाद जी ने आज के दिन इस्कॉन संस्था को स्थापन किया और इतना बड़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, हम लोग तो रेडीमेड इस्कॉन में प्रवेश किया, बड़ा इस्कॉन में झू का इतना बड़ा मंदिर में प्रवेश किया हमने, हमने मंदिर नहीं बनाया, हमने सीधा प्रवेश किया और मंदिर का जो प्रसाद बन रहा है वो खाया, मंदिर का रूम में जाके रहने लगे, सब सुविधा का लाभ लिया, है ना, रात को रहने का, स्नान करने का फर्स्ट क्लास, फिस्ट खाने का, संडे का प्रसाद का, सब आनंद लिया हम लोग। वैसे ही आप लोग में से बहुत लोग रेडीमेड भक्ति विधान में आए, पूरा बिल्डिंग रेडी था, कमरे रेडी, पेशेंट रेडी, जॉब रेडी, पगार रेडी, बिजनेस भी बना हुआ है, ज्वाइन कर लिया हमने, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया, जगह ले, जगह लेने से लेकर डोनेशन से लेकर बिल्डिंग खड़ा रहने तक, बिजनेस सेटल करने तक मेहनत किया, और आज फिर इस बिल्डिंग में इतना भगवान का नाम गूंज रहा है ना। तो ये सब जो मिशन है ना प्रभुपाद जी का, ये अपने आप बढ़ने वाला है, लेकिन हमको अपना अपना हाथ उसमें बटाना पड़ेगा, हमको गोदी गोदी बोलना छोड़ के हाथ बटाने का काम वे शुरू करना पड़ेगा। ये जीवन जब तक है, जब तक सांस है, जब तक धड़कन है हमारी, तब तक करना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चलो प्रभुपाद की, और केवल जय मत करो, उनके शिक्षा को पालन करो, जीवन में उतारो, मरीज को उनकी कृपा, उनकी कृपा उन मरीज तक पहुंचा दो जो अस्पताल में बीमार बनकर आ रहे हैं, कष्ट प्राप्त करके आ रहे हैं, दर्द लेके आ रहे हैं, उनका दर्द निवारण करो, उनको प्रभुपाद का संदेश दिला दो, खुद स्वीकार करो और उनको दिला दो, तो तुम्हारा भी जीवन धन्य, उनका भी जीवन धन्य। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।